नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में कहा, एमपी और राजस्थान के समन्वय और सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कल जयपुर में होगी। प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे से जनजीवन पर असर, कुछ जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अवकाश घोषित। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजस्थान को पानी की आवश्यकता होगी तो मध्य प्रदेश पूरा सहयोग करेगा। जयपुर में चल रहे राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने ये बात कही। उन्होंने दोनों राज्यों की साझा विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि समन्वय और सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है, इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजन लाल जी के साथ बात की, उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये अब मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में मध्यप्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। हमारे लिए अगर अपने राज्यों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य भी चाहिए।
सम्मेलन के एक अन्य सत्र लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला नेतृत्व और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि महिलाएं तकनीक, नीति और स्टार्टअप जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नए भारत की ताकत बताया। एक अन्य सत्र में दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अम्मार अल मलिक ने भविष्य के शहरों के निर्माण और उनके वैश्विक हब बनने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा विशेषज्ञों ने छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई की तरक्की में राज्यों की भूमिका और सहायक नीतियों के महत्व पर भी संवाद किया। डिजिफेस्ट के तहत आयोजित जयपुर कॉमिक कॉन में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। जयपुर में कल रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें शासन सुधार, आर्थिक विकास और नवाचार तथा समावेशी प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान राज्य के एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होंगे। ये सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सूचना तथा संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का भी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में इस समय 25 लाख रोजगार हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत डिजाइन, निर्माण, संचार, पालन प्रणाली, अनुप्रयोग, सामग्री और उपकरण सहित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादक देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 साल पहले विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान देने वालों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी जब जीर्णोद्धार के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के एरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि रोजगार मिलने के 15 दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। प्रदेश में इस योजना के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पाली के रोहट में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @EIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान EIR न्यूज और फेसबुक EIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे के प्रकोप से जनजीवन पर असर पड़ा है। ठंडक और गलन से आमजन के साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हैं। कोटा में एक ही दिन में पारा 9.5 डिग्री गिर जाने से ठंड और तीखी हो गई है। वहीं कोहरे के कारण क्षेत्र में दृश्यता भी काफी कम रही। उधर हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि दिन में बादल छाने और सर्द हवाओं से ठंड का असर तेज हो गया है।
जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर आज आम जनजीवन पर देखा गया। देर सुबह तक छाए घने कोहरे के चलते रेल सड़क यातायात के साथ लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही। दिन में बादलों की लुकाछिपी के साथ नश्तर चुभोती हुई सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटे रहने को मजबूर कर दिया। लोग दिन भर अलाव तापते देखे गए। दिहाड़ी मजदूरों और खानाबदोश लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं पशु पक्षी भी व्याकुल नजर आए। रेन बसेरों में भी लोगों की संख्या में और सुविधाओं में वृद्धि हुई है। कृषि विभाग ने किसानों फसलों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, अजमेर और सीकर में शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। जयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन कोल्ड वेव की संभावना है। विभाग ने अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने और उत्तरी हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। वहीं शीतलहर के मद्देनजर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। हनुमानगढ़ में 1 से 8 कक्षा तक के सभी स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पहले की तरह संचालित होंगी। इसी तरह श्रीगंगानगर में कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 3 तक रहेगा। डूंगरपुर में स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जनवरी तक छुट्टियां रखी गई हैं। कोटा जिले में भी आंगनबाड़ी और मांबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने आज जयपुर के आर्मी हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस समारोह की शुरुआत इस स्वास्थ्य शिविर से की गई है। इस शिविर में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हृदय और हड्डी रोग सहित विभिन्न बीमारियों के लिए विशेषज्ञ परामर्श दिया जा रहा है। दया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पहली बार हो रही सेना दिवस परेड को लेकर आम जन में भारी उत्साह है।
राजस्थान में आर्मी डे परेड हो रही है और उसका मैं कहूंगी इतना भव्य आयोजन इस बार प्लान किया गया है और उसी कड़ी में आज से ही शुरुआत है। बहुत सारे अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम भी हैं, तो मैं आर्मी कमांडर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। और पूरे मैंने देखा कि लगातार उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है।
इस मौके पर दक्षिण पश्चिमी कमान के सेनाधिकारी और सैन्य परिवारों के सदस्य मौजूद रहे। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनके द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए गए योगदान को याद किया जा रहा है। प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारों में आकर्षक सजावट की गई है और कीर्तन दरबार लगाए जा रहे हैं। अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भरतपुर और पाली सहित विभिन्न जिलों में गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। गुरुद्वारों में रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की देश विदेश में विशेष पहचान है। पक्षियों की नगरी के नाम से मशहूर इस उद्यान में अक्टूबर से फरवरी तक साइबेरिया और रूस जैसे देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से।
करीब 375 से अधिक प्रजाति के पक्षी केवलादेव उद्यान की शान बनते हैं। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह घना पक्षियों के लिए रास आता है। दक्षिण भारत और मालदीव तक इसकी पहचान है। केवलादेव उद्यान भारत का गौरव है। इन पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक केवलादेव उद्यान पहुंचते हैं और उनके रहन सहन खान पान तथा उनकी क्रीड़ाओं पर रिसर्च करने के लिए भी पक्षी प्रेमी उद्यान आते हैं। उनकी अठखेलियाँ सभी को मंत्रमुग्ध करती हैं।
शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
69वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आज से चित्तौड़गढ़ में शुरू हुई। 10 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 65 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में कहा, एमपी और राजस्थान के समन्वय और सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कल जयपुर में होगी। प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे से जनजीवन पर असर, कुछ जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अवकाश घोषित। और सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।